की प्रशिक्षिका हैं, आप विभिन्न विंग्स के जो स्पिरिचुअल कोर्सेज चलते हैं उसमें भी आप अपना आख्यान देती हैं, और समय समय पर जो आध्यात्मिक मेले होते हैं, मेगा प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी आपको विशेष अनुभव प्राप्त है। आप हेडक्वार्टर में आर्ट एंड कल्चर विंग की मुख्य वक्ता हैं, साथ साथ बहनों को भी इस विंग से संबंधित विषय पर ट्रेनिंग देती हैं। आपका 7 भाषाओं पर प्रभुत्व है। आप ओम शांति चैनल की डायरेक्टर हैं। आपके नेतृत्व में संस्कार, साधना, ईटीवी, जागरण इत्यादि चैनल्स पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तथा अनेकानेक आत्माओं को अपनी सेवाएं देकर आप लाभान्वित करती रहती हैं। अभी हम आदरणीय प्रभा दीदी जी से सुनेंगे बाबा के अनमोल रतन।
ओम शांति। सभी को 2013 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, और यही शुभ संकल्प है कि 2013 में हम सब कुछ अपना बाबा को कह दें कि हाँ बाबा सब कुछ तेरा में तेरा कर दो, क्योंकि कहा गया है कि जिसने तेरा तेरा कहा वो तर गया, जिसने मेरा मेरा कहा वो मर गया। हम तो वैसे ही मर के बाबा के बने, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, तो क्यों ना इस 2013 में पूरी तरह से हम बाबा के बन जाएं, जो बाबा की 3 मुरलियां चली, उन 3 मुरलियों के सार को अगर हम अच्छे से अध्ययन करें। अब बाबा हमसे होमवर्क नहीं दे रहा, अब बाबा हमें शिक्षा नहीं दे रहा, अब बाबा हमें ये बता रहा है कि बच्चे मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। बाबा हमें संतुष्ट मनी देखना चाह रहा, बाबा हमें बेफिक्र बादशाह देखना चाह रहा, बाबा चाह रहा कि हम मेरे को तेरे में कर दें, जो पूरे ज्ञान का सार है। तो आज का विषय भी है एक मत, एक रस और एक सहारा। ये 3 बातें और ये 3 मुरली बाबा की चली। ये तीनों बातों में बाबा के पूरे 76 वर्षों का ज्ञान का निचोड़ आ जाता है। एक मत, दुनिया में बहुत लोगों से मिलते हैं, परिवार में बहुत लोगों से मिलते हैं, लौकिक अलौकिक में, लेकिन हमारी मत एक मत हो। एक जैसी तो सबकी नहीं हो सकती, लेकिन एक की माने तो हम सबकी एक मत हो सकते हैं। देहधारियों की सबकी अलग अलग मत होगी, लेकिन एक बाबा की मत को हमने मान लिया तो सबकी मत हमारी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते कि एक मेरी मत को मान लिया, यानी क्या बाबा की मत क्या है? एक ही तो मत है, जो पहले दिन ज्ञान दिया था वो अब तक चल रहा है और अंतिम दिन तक चलेगा। बाबा की एक ही मत है, अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझो। और जब हम अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा मानेंगे तभी तो वो सम्मान आएगा कि मैं दूसरे को भी श्रेष्ठ आत्मा देखूं। बस ये एक मत में सारा कुछ आ जाता है। ये पहले दिन का पाठ ही अभी तक हमने पक्का नहीं किया। जब हम आए पहले दिन तो हमें क्या ज्ञान सुनाया गया? पहले दिन का सबक याद करिए कि आप एक आत्मा हैं। पहले दिन ये तो जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन क्या ये जाना कि मैं कौन सी आत्मा हूं? अंतिम दिन तक यही पाठ चलना है, यही जानना है कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। हमें पता है कौन से मंदिर में हमारी पूजा हो रही है? कोई जानता है कौन सी देवी के रूप में, कौन सी देवी के नाम से, कौन से देवता के नाम से हमारी पूजा हो रही? हम नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा को तो आते बरोबर शिव बाबा ने बता दिया, भविष्य में आप श्री कृष्ण बनोगे। जन्माष्टमी के दिन बाबा नाचने लगता था, बूढ़ा था लेकिन फिर भी नाचता था। देखो सारी दुनिया में मेरा बर्थडे मनाया जा रहा, जन्मदिन मनाया जा रहा। हमें बाबा ने ये तो बता दिया कि आप भविष्य के होवनहार देवी देवता हो, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कौन सी देवी बनने वाले हो, आप कौन सी देवता बनने वाले हो। लेकिन ये बता दिया आप चाहो तो आप अपने भविष्य को देख सकते हो, और वो भविष्य कौन सी रूप में मेरी पूजा होगी, मैं कौन सी देवी या देवता बनूंगा, उसके लिए पहले दिन वाला पाठ ही पक्का करना है। और पहले दिन वाला पाठ है कि मैं आत्मा हूँ। जिस आत्मा को, ये आत्मा की जितनी ज्यादा गहराई से महसूसता होती जाएगी, जितनी ज्यादा अनुभूति में रहने लगेंगे, अनुभव में आने लगेगा, चलते फिरते उठते बैठते देह का भान खत्म हो के आत्मा हूँ और हरेक को हम आत्मा देखने लगेंगे, उस दिन हमें अपने भविष्य का साक्षात्कार होने लगेगा। अभी हमें अपने भविष्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा, अभी हम नहीं जानते कि हमारा पूजन कहाँ हो रहा। तो बाबा की एक मत, बस पहली मत, पहले दिन जो कहा गया, अपने आप को पूजनीय श्रेष्ठ पवित्र आत्मा मानो। सिर्फ मानो नहीं, जानो भी और उस अनुभव में स्थित हो जाओ। एक इस पाठ को जिस आत्मा ने पक्का कर लिया, एक की मत, सबकी मत मानेंगे सबको हम खुश नहीं कर सकते। हरेक की अलग मत होती, हरेक की अलग इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक को खुश कर लिया, एक की मत को मान ली, तो हम सबको खुश कर सकते हैं। सबको खुश करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक बाबा को खुश करना हमारे हाथ में है। और एक बाबा की मत मान ली, यानी हम सभी आत्मा को खुश कर सकते हैं। क्यों खुश कर सकते हैं? कि उसमें ही तो सारा सार है। अभी तो मैं देखती हूँ कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बहुत तीव्र पुरुषार्थी कर रहा है, कोई कभी कभी आता है। तो मेरी तो नजर अभी देह पे जा रही है। जिस दिन मेरी दृष्टि पहले पाठ वाली हो गई कि सभी श्रेष्ठ आत्मा है, सिर्फ बाबा ने ये नहीं कहा अपने आप को समझो, हरेक को ये समझो ये ईश्वर की संतान है। और ये मैं कब समझ सकती हूँ? जब इस स्वमान में मैं स्थित रहूंगी। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा के बोल कैसे होंगे, महान आत्मा के कर्म कैसे होंगे, महान आत्मा चलेगा कैसे, उसकी सोच कैसी होगी? थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ज्ञान बहुत सुन लिया। अब बाबा ज्ञान नहीं सुनाना चाहता, अब बाबा ज्ञान की रिजल्ट देखना चाहता है कि इतने वर्ष मैंने बच्चों को सुना दिए, बच्चे अब तो मुझे ये चाहिए। पहले बाबा बहुत बड़े बड़े वरदान देता था, ये पिछली तीन मुरलियों में देख लो, क्योंकि इतने सालों से इतने वरदान दिए, एक वरदान भी जीवन में अगर हमने उतार लिया होता तो बाबा जैसे चाहता वैसे बन गए होते। तो अभी बाबा कहता कि बस पढ़ाई पूरी, अभी रिवीजन। और बाबा क्या चाहता है? मैंने पढ़ा दिया, अब तुम बच्चों की रिजल्ट में क्या देखना चाहता हूँ? और उस बाबा की रिजल्ट, बाबा जो चाहता है उसको पूरी करने के लिए एक मत बाबा की जो है उसको हमें फॉलो करना ही होगा। देहधारी की मत अलग है, हर एक की होगी। एक हाथ में पांच उंगली एक जैसी नहीं होती, हर एक की बातें सोच एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन एक बाबा की सोच को तो हम कहीं ना कहीं मान देना, एक बाबा की बात को मान ले। और कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, मानो ना मानो आप। एक परमात्मा से प्यार है, उसको कितनी जन्म ढूंढा, वो सिर्फ एक बात कह रहा, और वो एक बात मानने में हमारी पूरी सफलता है। हरेक को श्रेष्ठ आत्मा देखना, वो हम कब देख पाएंगे, जब मैंने अपने आप को ये निश्चय किया होगा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान की नजरों में आई महान आत्मा हूँ। भगवान की नजर ऐसे वैसे पे नहीं पड़ सकते, हम साधारण नहीं हैं। भगवान कहता हम सुन तो लेते, लेकिन उसको जीवन में कहीं ना कहीं विश्वास भी करो। कई आत्माएं कहती बाबा तो कह रहा, हमारे कर्म तो साधारण है, हमारे बोल तो साधारण है। वो जानता है कि इन्होंने कल्प कल्प किया था। कहीं ना कहीं दिल से आपको उस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि भगवान कह रहा है तो मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूजनीय आत्मा हूँ, जिनकी आज भी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो एक साधे सबद सदे, एक चीज को साध लो हर चीज सद जाएगी। हम हर एक को खुश नहीं कर सकते, लेकिन एक को खुश करके सबको खुश हो सकते कर सकते। और यही कि जब मैं अपने आप को उस दृष्टि से देख रही हूँ तो सभी को उस दृष्टि से देख रही हूँ। एक महात्मा जी थे, आत्मज्ञानी थे, चेले बहुत थे। एक ने आके कहा गुरुजी इसने गलत किया, दूसरे ने आके कहा गुरुजी उसने कहा गलत किया पहले ने, गुरुजी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे ने आके कहा गुरुजी इसने गलत किया, गुरुजी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। तीसरा आया गुरुजी दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं, कहा तुम भी ठीक कह रहे हो। ये है ज्ञानी तो आत्मा के निशाने। एक बाबा की बात मान ली ना तो हमें सब बातें अच्छी लगने लगेगी। एक बाबा की ही नहीं मानते करके ये गलत है ये गलत है ये गलत है। एक बाबा की बात मान ली तो वो भी ठीक लगेगा, वो भी ठीक लगेगा, जो बोल रहा है कि ये दोनों ठीक नहीं वो भी ठीक लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारी मत भिन्न हो रही है, हमारी सोच अलग हो रही है, करके अभी तक हमारी वो श्रेष्ठ स्थिति नहीं हो रही है। अभी तक हम क्यों नहीं संतुष्ट बन रहे, आत्माओं से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा कर रहे हैं। भगवान मिल गया, अब क्यों देहधारी से अपेक्षा कर रहे हैं? वो एक ईश्वर की अपेक्षा जो है उसके समान बन जाए, हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी। अभी भी हमारी इच्छाएं कामनाएं हमें भटका रही हैं। अभी भी हम कहते इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी बात मानेगा, और आपकी बात भी मानेंगे लोग। जिस दिन आपकी दृष्टि वैसी हो जाएगी तो आपको कहने का ही मौका नहीं मिलेगा कि कोई मेरी बात नहीं मानता। अभी तक कहीं ना कहीं देह का भान है, देह का अभिमान है, वो आत्मिक स्थिति पक्की नहीं, इसके लिए मेरी बात नहीं मानते। अभिमान है ना, अगर मैं आत्मा हूँ ये भी आत्मा है परमात्मा की संतान है अपना लग रहा है तो उसको लगेगा ही नहीं, नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई कारण होगा। बाबा ने बहुत ज्ञान सुना दिया, कर्मों की बहुत गुह गति सुना दी, इस आत्मा का पाठ ऐसे ही, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम संतुष्ट नहीं होते, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, नहीं इसने तो मेरी बात माननी चाहिए। सब हमारी बात मानने लगेंगे जिस दिन हमारी बाबा ने जो पहला पाठ पक्का कराया, आत्मिक दृष्टि पक्की कर लो। आज हमारी मते भिन्न हो रही है क्योंकि बाबा की बात को हमने पहले दिन के पाठ को पक्का नहीं किया। बहुत ज्ञान को बहुत ज्यादा ओवरलोडेड ज्ञान से मत होइए, मेन मेन चीजों को मान लीजिए। जैसे कि झाड़ की जड़ में पानी दे दो तो पत्ते अपने आप हरे भरे रहते, फल लगता है। एक जड़ ज्ञान की जो है, जो पहले दिन का पाठ पक्का करने को बाबा ने कहा, अब तक हम बच्चों का नहीं हुआ इसलिए अभी तक सबकी मत एक नहीं मिल रही। बाबा ने कहा, कहते बाबा बहुत कुछ हो रहा है, कलयुग कितनी अति पे जा रहा है, कब अंत होगा। बीच में बाबा ने कहा कि बाबा से उब गए क्या जाने के लिए, कहते हो कोई घर में आया तो पूछा जाता है क्या कब जाओगे, कब विनाश होगा, इसका मतलब यही कि अब उब गए ये दुनिया से। बाबा से ऐसे पूछना अच्छा लगता है क्या? बाबा हर प्रश्न का जवाब हमें दे रहा है। अब हमारे मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, और वो प्रश्न कब नहीं होंगे, जब पहले दिन वाला पाठ पक्का कर लिया होगा। और पहले दिन का पाठ जिसका पक्का है वो आत्माएं एक रस स्थिति में स्थित ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रस स्थिति कब होती है? हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। हम विधि के हाथ नहीं बोलते, हाथ में हमारे हैं, लेकिन योगी तो आत्मा की निशानी ही ये है कि वो 100 कोई गाली भी दे तो उसके ऊपर असर ना पड़े, कोई 100 फूल भी चढ़ाए तो उसके ऊपर असर ना पड़े। ठीक है, देहधारियों को क्या चढ़ा भी देंगे उतार भी देंगे, भगवान नहीं कभी ऐसे करेगा। भगवान हमें चढ़ा नहीं चाहता है। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचे, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा कल सुबह आना। दूसरे दिन सुबह पहुंचा, सुबह सुबह गुरुजी मैं आ गया मुझे शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा वो सामने पहाड़ देख रहे हो? कहा जी। कहा जाओ 100 पत्थर चुन के लेके आओ एक बोरी में। 100 पत्थर चुन के ले आया। कहा ये 100 पत्थर एक एक करके वो पहाड़ को मार के आओ। सारा दिन लग गया, शाम को आया गुरुजी 100 पत्थर पहाड़ को मार के आ गया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा कल सुबह आना। दूसरे दिन सुबह आए, गुरुजी आ गया मुझे शिष्य बना लो। कहे एक काम करो 100 फूल चुन के लाओ। 100 फूल चुन के ले आया टोकरी भर के। गुरुजी ले आया जाओ ये 100 फूल वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा के आओ एक एक करके। शाम को लौटा, गुरुजी पहाड़ पे फूल चढ़ा के आ गया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा, अब ये बताओ क्या हुआ। कहा क्या हुआ? कहा पहाड़ को क्या हुआ? कहा गुरुजी पहाड़ को क्या होना था? कहा क्यों, कल तुमने 100 पत्थर मारे, आज तुमने 100 फूल चढ़ाए, तो कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। कहा गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, पहाड़ को कहीं कुछ होता है क्या? तब गुरुजी ने कहा मेरे शिष्य बनना चाहते हो, पहाड़ के जैसी स्थिति है तुम्हारी? कोई 100 पत्थर मारे 100 गाली मारे तो भी नहीं हिलो डिलो, और कोई 100 फूल रूपी तारीफ कर दे तो भी वैसी रहो, अगर ऐसी स्थिति है तो मेरे शिष्य बन सकते हो। हमको तो भगवान ने अपना बना लिया, वो तो गुरु भी ऐसा जो सदगति देते, और वो कह रहा है एक रस स्थिति बनाओ। हमारी एक रस स्थिति बनी है कि कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो तुमको ही बोलना आता है क्या, मुझे नहीं बोलना आता क्या, ऐसी हम बोल देते हैं। ईद का जवाब पत्थर से देंगे। अगर अभी तक ये बात है इसका मतलब देह का भान अभी तक भरा पड़ा है, पहले दिन वाला पाठ तो पक्का ही नहीं हुआ है। एक रस स्थिति का मतलब तो ये, चलो भाई बोल दिया तो बोल दिया, बोलो उसका भी कोई ना कोई पार्ट है बोलने का, उसके साथ मेरा हिसाब किताब है। लेकिन नहीं, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम भगवान की संतान हैं, हमें कोई देहधारी नहीं पड़ा रहा, हमें स्वयं परमात्मा ज्ञान से गुण से शक्तियों से भरपूर कर रहा है। अगर उसके पढ़ाने के बाद भी हमारी एक रस स्थिति नहीं हुई, हम उसकी एक की मत पर नहीं चले, फिर दुनिया वाले कहेंगे भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो चलनी लेकर बैठे थे क्या? इतना पढ़ाया फिर भी वहां पर जाके साधारण बनेंगे, दास दासी बनेंगे तो कहेंगे तुम्हारी जगह हम होते तो हम इतना ले लेते कि तुमको उधार भी दे देते, अच्छा लगेगा सुनने में? कहने का भाव, अभी भी भगवान के महावाक्य सुनकर हमारी बाबा जैसा चाहता वैसी दृष्टि वैसी मत नहीं हुई, एक रस स्थिति नहीं हुई, तो फिर कब होगी? भगवान से ज्यादा तो शक्तिशाली कोई नहीं है। सर्वशक्तिवान परमात्मा शक्तियां दे रहा, ज्ञान गुण दे रहा, प्यार दे रहा, उसके बाद भी हम परिवर्तन नहीं हुए तो क्या कोई देहधारी हमें परिवर्तन कर पाएगा? कोई देवी देवता हमें खुश कर पाएंगे? अगर भगवान के ज्ञान प्यार से संतुष्ट नहीं हुए तो देवी देवता से संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। अभी भी सोच लीजिए, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान के पढ़ाने के बाद हमारे विचार कैसे हो, हमारी सोच कैसी हो? जो बाबा कहते व्यर्थ से मुक्त बनो। व्यर्थ क्या है? छोटी सी बात में हमें देह का अभिमान आ जाता, देह का भान आ जाता, इन्होंने मुझे कहा तो कहा क्यों, रिएक्ट करते। हमसे तो अच्छे भक्ति मार्ग वाले हैं, ऐसे से महान पुरुष हुए जिन्हें परमात्मा ने नहीं पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आत्मज्ञान रखते थे, थोड़ा बहुत भक्ति करते थे, उसके बल पर उनके जीवन में इतनी महानता विचारों में। उनको देखकर हमें लोग कहेंगे तुम्हें डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा था, इनको तो डायरेक्ट भगवान नहीं पढ़ा रहा था, इनकी और अपने विचार से कहीं ना कहीं कंपैरिजन करो। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, उनका नाम है संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज एक बार गंगा स्नान करने वाराणसी गए। सुबह 4 बजे वो गंगा स्नान करके लौट रहे थे, एक माताजी को पता नहीं क्यों उन पे गुस्सा आ गया, उनके ऊपर थूक दिया। एकनाथ महाराज दोबारा गए स्नान करके लौट रहे थे, माताजी ने देखा कि ये मेरे को देख क्यों नहीं रहा, फिर थूक दिया। एक्शन का रिएक्शन नहीं हो रहा। कई बार इंसान इसलिए भी चिढ़ता कि मैं इनको इतना गुस्सा दिला रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, ये जवाब क्यों नहीं देते। संत महात्माओं में तो बहुत धैर्यता होती है। दोबारा फिर चले गए स्नान करने, फिर माताजी ने थूक दिया, फिर चले गए। सारा दिन माताजी जितनी बार वो स्नान करके आते एक नाथ महाराज जी के ऊपर थूकती रही, एक बार भी उन्होंने देखा नहीं कि कौन थूक रहा है, गुस्से की तो बात ही अलग। ये सत्य घटना आपको बता रही। और सुबह से शाम हो गए, शाम तक माताजी ने एक नाथ महाराज पर 100 बार थूका और वो 100 बार गंगा स्नान करके आए, अब माताजी से नहीं रहा गया। ये तो देखता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, नीचे उतर कर आई। जैसे वो गंगा स्नान करके आ रहे थे 100वीं बार, उनको पकड़ के झंझोर के बोला किस मिट्टी के बने हो तुम, सुबह से शाम हो गई मैं 100 बार तुम्हारे ऊपर थूकी हूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुमने एक बार भी देखा नहीं कि तुम्हारे ऊपर कौन थूक रहा है? एकनाथ महाराज जी ने क्या जवाब दिया? माता जी मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ, मैं ये ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक बार गंगा स्नान करने आया था, आपके बहाने 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिल गया, मैं तो आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। 8 बार और थूक देती 108 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिल जाता। उनको भगवान नहीं पढ़ा रहा था, हमें भगवान पढ़ा रहा है। हमारे ऊपर कोई एक बार दो बार थूके क्या करेंगे सोच लीजिए, कोई धीरे से ही ऐसा कर दे तो क्या करते हैं सबको पता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एक मत अभी तक जो पहले दिन की दी थी वो पक्की नहीं की, एक रस स्थिति जो ज्ञान सुनने के बाद होनी चाहिए वो नहीं हुई, एक मत हो जाती, परमात्मा की एक मत को मान लेती, ये तो आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। अरे किया तो एकनाथ महाराज को तो भगवान ने नहीं पढ़ाया था, भक्त आत्मा थे, उन्होंने नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लिया। हमें भगवान स्वयं पढ़ा रहा है। जब भी हमारे ख्याल हमारे विचार नेगेटिव होते हैं, व्यर्थ होते हैं, व्यर्थ में हमारी शक्ति बहुत ज्यादा जाती है और ये व्यर्थ और विघ्नों को हमारे सामने ले आता है। क्योंकि एक बार जो नेगेटिविटी का सिलसिला शुरू होता है वो रुकता नहीं है जल्दी, वो बाबा से योग नहीं लगाने देता, फिर उस व्यक्ति उस घटना उसके बारे में विचार चलते रहेंगे, उसी के बारे में विचार चलते रहेंगे और जब तक डैश डैश डैश, सबको पता है हमें मिल नहीं जाता रिजल्ट, तब तक हमारा मन शांत नहीं होता। अगर अब भी हमारा मन शांत नहीं हुआ, अब भी हमारी स्थिति छोटी छोटी बात में डावाडोल ऊपर नीचे हो जाती है, इसका मतलब एक रस स्थिति का अनुभव हमने नहीं किया और इसका बाबा ने सरल अर्थ बता दिया, सरल इसका कारण बता दिया, अभी तक व्यर्थ से मुक्त हम नहीं हुए हैं। ये व्यर्थ क्यों चलता है? ये व्यर्थ सिर्फ हमारी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति ना होने की वजह से चलता है। अभी हम अपने मन को अपनी आत्मा को समझा ले, हे आत्मा जो कुछ मिल रहा है जैसा मिल रहा है यही सत्य है और मुझे यही भगवान की इच्छा समझ के इसको एक्सेप्ट करना है और खुशी खुशी करना। कई लोगों के रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होगी, परिवार वाले ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो परिवर्तन नहीं हो सकते। कुछ चीजें ज्ञान के आधार पे अब हमें समझ लेनी है कि जीवन में कुछ चीजें हम हमारे हाथ के बाहर है और जो चीज हाथ के बाहर है उसको एक्सेप्ट कर लेना ही समझदारी है। कुछ लोगों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ रिश्तेदारों को हम चेंज नहीं कर सकते, उन रिश्तों से भाग भी नहीं सकते, उन संबंधों से भाग भी नहीं सकते। तो क्या करना है? वो तो नहीं चेंज हो रहा, मुझे तो अपनी स्थिति एक रस बनाए रखनी है, मुझे ज्ञान के आधार पे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। बाबा ने कहा है कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। बाबा ने तो मजाक मजाक में मुरली में हंस के एक मुरली में कहा, आप सबने सुना होगा, कोई कहता मेरी सास मुझे बहुत सताती, बाबा ने क्या कहा, किसी जन्म में तुमने उसके साथ बन के उसको सताया होगा। अब इससे अच्छा और भगवान क्या उदाहरण दे सकता है? ये कर्मों की गुह गति है, ये हमारे सामने जो कुछ भी अच्छा या बुरा आ रहा है ये और कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। और हमें ये सोच लेना है कि मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ गलत किया था, उसकी रिजल्ट ये आ रही है और भगवान कह रहा है तो अब मुझे एक्सेप्ट करना। जब गलती की थी वो तो याद नहीं है, अब सजा मिल रही है तो ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा क्यों? अब हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए अगर व्यर्थ से मुक्त होना है, अगर एक रस स्थिति बनानी है, एक बाबा की मत पे चलना है, उसको पक्का करने के लिए जिन चीजों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिन लोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते, जिन परिस्थितियों को परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको हमें मान लेना है कि ये तो ऐसे ही रहेंगे। मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है, मुझे मेरा नेचर, मुझे मेरे अपने आप को परिवर्तन करना है। मैंने बहुत साल पहले ज्ञानमृत में एक कहानी लिखी थी। हम कहते भगवान की बनी 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, दादियां जैसे कहती, बड़े भाई जैसे कहते, महारथी जैसे कहते कि बहुत मजा आता है बाबा की गोद में, क्या आनंद की अनुभूति होती, परमानंद की अनुभूति, हमें तो होती नहीं, पता नहीं ये ऐसे ही कहते क्या। ऐसे कोई नहीं कहता, ऐसे कोई 75 साल 76 साल ज्ञान में नहीं चलता, जरूर सॉलिड उनको वो प्राप्तियां हुई है, हमें क्यों नहीं हो रही है? कारण पे थोड़ा हमें विचार करना होगा, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं वो आनंद मिल रहा। मुझे सौभाग्य मिला जगदीश भाई जी का, कुछ समय उनके साथ दिल्ली, जब भी मैं बहुत मेरे दिल्ली के चक्कर लगते थे तो मैं जब भी जाती थी तो मुझे बहुत यानी मतलब अपना सौभाग्य लगता कि उनका साथ मिला कहना चाहिए कुछ लेन देन करने की विचारों की। तो एक फिल्म हमने बनाई थी तो जब मैं दिल्ली गई तो भाई साहब से फोन करके कहा कि मैं आई हूं, तो कहा आ जाइए चाय साथ में पियेंगे। हम चले गए, फिर कहा कि वो फिल्म की रिजल्ट क्या रही। हमने बताया कि कई लोग कोर्स करने आते हैं, वो देखने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ का, बस हमने कहा बस और क्या चाहिए भाई साहब। मैं बहुत नई थी ज्ञान में, तो हमने कहा यही तो चाहते हैं ना कि जो अज्ञानी बच्चे हैं वो बाबा के 7 दिन का कोर्स कर लें, मुरली सुनने लगे। कहा बस, मैंने कहा मेरी तो सोच के हिसाब से यही रिजल्ट होनी चाहिए। भाई साहब आप बताइए क्या क्या होना चाहिए। भाई साहब ने कहा आप मुझे बताओ एक बात का जवाब कि हमारे ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है। मैंने कहा सबसे बड़ी प्राप्ति है कि बाबा से योग लगे, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को हम बाबा के बना दे। कहा बस, इसके आगे तो मुझे पता ही नहीं था। आप लोग बताएं ब्रह्म जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है। सबसे बड़ी प्राप्ति और भाई साहब ने कहा, आज भी मुझे याद रहता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है रोज चेक करें मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में कितने समय झूलती हूँ। अतीन्द्रिय सुख क्या है? जिसे हम ज्वाला स्वरूप स्थित कहते हैं, जिसे हम बीज रूप स्थिति कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बस गई मैं और बाबा, आत्मा बाबा की गोद में ऐसे झूल रही थी, बस कोई संकल्प नहीं, बस आनंद, कोई संकल्प नहीं। जो सबसे पावरफुल स्थिति है वो रोज कितनी समय रहती, ये ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कौन करेगा? अंदर का सुख है ये, बाहर का नहीं, आत्मा का सुख, आत्मा आनंद की अनुभूति करे जब आत्मा की स्थिति पक्की होगी, जब किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, एक रस स्थिति रहती होगी, आनंद की स्थिति रहती होगी, सब कुछ बेफिक्र बादशाह बन गए होंगे, तेरा काम है ना, मैं सब कुछ मैं ही करूं क्या, मैं तो बाबा से कई बार बड़े प्यार से बात करते हूँ, बाबा आप तो ऊपर बैठे हो ना, आप तो खाली हो ना, थोड़ा सा ये काम नहीं हो रहा, थोड़ा कर दो ना, बहुत काम है उसको, लेकिन एक प्यार है एक हुज्जत से कि आपने तो कहा ना सब कुछ तेरा कर, सब तेरा तेरा कर दो, मेरा मेरा मत करो, तो मेरी प्रॉब्लम मेरी क्यों है, मेरी प्रॉब्लम अब आपकी है, आप ये भी आप संभालो, और सही में सोल्यूशन मिलता है। लेकिन उतने अधिकार से हम कहें भी तो, वो कहने का हमारे में वो गट्स भी तो, गट्स कौन रख के कह सकेगा, तेरी प्रॉब्लम है मेरी नहीं है, मैंने अपना जीवन दे दिया, मैं सोचूं भी क्यों, मुझे क्या बोलना है ये भी मैं क्यों सोचूं। आपके बच्चे हैं, आपको करवाना, हाँ माइक रेडी है, आप आके बोल जाओ, आप सोचो ना, बुद्धि भी बाबा को सरेंडर कर दो ना, देखो वो कितनी अच्छी चलाता है, मन को भी सरेंडर कर दो ना, देखो कितने अच्छे विचार आपके मन में पैदा करता है। हम तो कहते तो सब कुछ बाबा तेरा तेरा तेरा, जैसे सेठ लोग करते ना, सब कुछ तेरा है बेटा, सब कुछ तेरा, सिर्फ कबाड़ की चाबी मेरी है, माल सब अंदर ही रखा है। हम भी ऐसे ही करते हैं, बाबा सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा, लेकिन सब कुछ अपने पास संभाल के रखा हुआ है। क्या क्या संभाल के रखा हुआ है? जो कोई काम की चीजें नहीं, हमारे काम की नहीं है, वो चीजों को संभाल के रखे। तेरा तेरा सिर्फ कहने से नहीं होगा, अंदर से फीलिंग, सब कुछ तेरा बाबा, मैं तेरी, मेरी प्रॉब्लम तेरी, भले ही हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो परिवार भी तो तेरा है, आत्माएं भी तो तेरी है, मैं तो निमित्त हूँ ना यहाँ पे, मुझे तो निमित्त तूने बनाया इन आत्माओं की सेवा के लिए, लेकिन है तो तेरी ना, तो मैं फिक्र क्यों करूँ। देखिए बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की स्थिति होती है, लेकिन कौन कर पाएगा ऐसे, सही में जिसने बाबा को कदम कदम पे कहा होगा सब कुछ तेरा, सही में फीलिंग में लाया होगा कि कुछ भी काम करने जा रहे हैं, बाबा चलो जल्दी, मैं तो ऐसे ही करता, बाबा छतरी पकड़ के चलना मुझे धूप लगेगी, महसूस होता है बाबा की किरणें छतरी रूप में आ रही, बाबा मेरे साथ साथ चल रहा। अभी जब मेरे साथ बैंक चल रहा है तो मुझे पर्स उठाने की या कुछ रखने की कहाँ जरूरत है, सब कुछ तो उसके पास है, करना तो उसको है देना लेना, लेकिन हर वक्त याद रहता, पानी भी पीते तब याद रहता बाबा पानी पियोगे, वो नहीं पिएगा, लेकिन फीलिंग आपकी साथ है तो साथी को पूछते ना आप खाएंगे आप पिएंगे, तो हर वक्त बाबा इस तरह से याद रहता, वही तो चाहिए, वही तो एक रस स्थिति है कि बाबा जब साथ में तो फिर लोगों की बातों में फीलिंग नहीं आएगी, बाबा अलग होता है तब लोगों की बात हर्ट करती है, अरे इसने मुझे ऐसा कहा, इनको ऐसा नहीं पता मैं कौन हूँ, अरे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, जिसने कहा कि तुम महान आत्मा हो, वो फीलिंग रहे और बाबा मेरे साथ है, अगर कोई ने चलो मेरा अपमान भी कर दिया तो मेरे साथ जो है वो भी तो सुन रहा है ना, तो उसका नहीं हुआ क्या अपमान, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ मेरा काम हुआ, पहले तो तुम थे मेरे साथ में ना, कभी नहीं होता है अपमान, जब हम उसको अलग करते हैं तभी आपको अपमान की फीलिंग आएगी, जब आप सोचते हैं वो अलग है तब, हर वक्त सोचिए कि साथ में है, यानी एक मत एक रस और एक बाबा का, एक बाबा बस वो ही आधार, उसको ही सहारा बनाई, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है अंत में सभी आधार हट जाएंगे, किसी भी देहधारी को आधार बनाया होगा, कितनी भी बड़ी हो, हर एक के दबे हुए कई जन्मों के संस्कार ऊपर आएंगे, मैं किसी को मानती हूँ हमेशा मेरी प्रॉब्लम आती है उनके पास जाके कहती हूँ दीदी ये बात है ऐसी बात है, वो मेरी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अंत में कोई प्रॉब्लम आई और मैं गई और उनके पास उस समय परेशानी खुद उनकी कोई प्रॉब्लम से है, कहेंगे क्या मुंह उठा के आ जाते हो, जब देखो तब खुद अपना कुछ समस्या का समाधान नहीं कर सकते क्या, मेरे लिए तो वो देवी थी, मेरा तो दिल टूट गया, अरे इतने ज्ञान में चलने वाली बहन ने मेरा दिल तोड़ दिया, क्या हो जाएगा, उससे भी दिल टूट जाएगा बाबा से भी दिल टूट जाएगा, आधार क्यों देदारी को बनाया, मान सम्मान सबका करना है लेकिन आधार उसको बना जो हिलेगा नहीं, बाकी सब आत्माएं हिलेंगी, सभी के कई जन्मों के संस्कार ऊपर उछलेंगे, किसी में क्रोध किसी में लोभ किसी में मोह किसी में अहंकार किसी में कुछ, दबे तो इतने जन्मों के हैं ना कुछ तो हिसाब किताब आएगा, तो हम क्यों उनको आधार बनाए, सबकी सुने लेकिन निराधार बनना है, और निराधार बनने के लिए एक बाबा को आधार बनाओ, वो नहीं हिलेगा, वो देह में नहीं आता है, उसको कोई कामनाएं नहीं है, उसके कोई ऐसे संस्कार नहीं है, तो अब हमें जैसे जैसे बाबा के इशारे दुनिया के इशारे पता चल रहे, अब हमें निराधार स्थिति, एक तू ही आधार, एक तू ही सहारा, कई कहानियां सुनते आए पढ़ते आए, जब जब हमारा विश्वास डगमगाता है, निश्चय डगमगाता है, सामने वाला सोचता इसको तो मेरे पर विश्वास ही नहीं, जाओ मैं नहीं करता मदद, यही बात देवताओं में होती है, एक व्यक्ति नाव में से जा रहा था, थोड़ा सा छेद हो गया पानी आने लगा, उसे याद आया कि मैं 9 दिन दुर्गा माता का उपवास रहता था नव दुर्गा में, देवी मैया मेरी नाव में पानी भर रहा है बचा लो, 9 दिन आपका उपवास किया है बचा लो बचा लो बचा लो, धीरे से आंख खोल के देखा पानी तो और भरते जा रहा है, याद आया हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था तेल चढ़ाता था, हनुमान जी जरूर बचा लेंगे, वो तो लंका पार करके वहां समुद्र पार करके चले गए थे ना, तो ये छोटी सी नाव में पानी का क्या है, हनुमान जी हनुमान बाबा आ जाओ, शनिवार को हर शनिवार को तेल चढ़ाता था अब ज्यादा चढ़ाऊंगा, फिर आंख खोलकर देखी पानी तो और भरते जा रहा है, अरे हनुमान जी भी नहीं हारे, नहीं जन्माष्टमी में कृष्ण जी की इसमें चंदा बहुत देता था, कृष्ण जी जरूर बचा लेंगे, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया डूब रही है जाओ पार लगा दो पार लगा दो पार लगा दो पार लगा दो, आंख खोल के देखी तो पानी तो और ज्यादा भरते जा रहा, अभी तो बेचैनी। लास्ट में याद है सबसे ज्यादा तो जिंदगी में गणेश जी विघ्न विनाशक की पूजा की, हर साल लाके 10 दिन रख के मूर्ति पूजा करता था, 30 साल तक किया। जरूर हनुमान गणपति बप्पा बचाएंगे, गणपति बप्पा विघ्न विनाशक हैं, आ जाओ बचा लो, तब तक तो लेट हो गई, ओम शांति हो गई, डूब गई नाव। ऊपर गया कहता सबसे पहले गणपति बप्पा से मिलना है। गणपति बप्पा सामने आए, कहा मैंने आपकी इतने साल पूजा की फिर भी मैं डूब रहा था, आपने मेरे को नहीं डूबने से बचाया, मेरी नाव डुबो दी। गणपति बप्पा ने जवाब दिया हर साल तू मेरे को डुबोता था, एक बार मैंने डुबो दिया तो क्या हुआ। 30 साल तूने पूजा की, तूने 30 बार मेरे को डुबोया, ये क्यों है? इसका मतलब बताने का क्या? एक की परिश्रय नहीं था, पहले देवी मैया को पुकारते रहा, जैसे देवी मैया तक वहां पे पुकार, बहुत लोग पुकारते हैं ना, जब तक देवी मैया तक बात पहुंचती, देवी मैया चलने को ही तो देखा कि ये तो हनुमान जी को बुला रहे, देवी मैया ने कहा हनुमान जी चले जाएंगे, चलो कोई। अब जब तक हनुमान जी के पास पहुंची बात, हनुमान जी चलने को था तो देखा ये कृष्ण कन्हैया बंसी बजाइए को बुला रहे, वो चले जाएंगे भाई। और जब तक कृष्ण जी तक बात पहुंची, वो चलने को हुए बंसी बजाते बजाते, तो देखा ये तो गणपति बाबा को बुला रहे तो वो चले जाएंगे। अगर एक किसी को बुलाया होता तो क्या होता? नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे भरोसे पे है, मेरा नाम खराब होगा? हर एक को नाम का रहता है, तो एक किसी को भरोसा रखता तो नहीं डूबता। हमारे जीवन में भी ऐसा है, एक को जब पहचान लिया, जान लिया, तो क्यों ना अब उसके विश्वास पे निश्चय रखे, उसकी बात को हम अमीठ लकीर बना ले कि बाबा जो कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला है। और वो कितना पढ़ाएगा, पहले बाबा मैं, मुझे याद है तब 15-20 साल पहले जब बाबा की अव्यक्तवाणी चलती थी तो बाबा मुरली के अंत में कहते थे समझा समझा, पढ़ी होगी आप लोगों ने, सुनी भी होगी सबने, तब बाबा पूछता था समझा, यानी मैंने जो कहा समझ में आया, समझ में आया होगा तभी तो जीवन में उतारेंगे। अब बाबा नहीं कहता समझा, अब बाबा क्या कहता, अच्छा अच्छा, और अच्छा कहके जो कहना होता चला जाता। क्यों? क्योंकि इतने साल से समझा समझा के भी नहीं हम समझ रहे, तो और समझा समझा बोल के नहीं समझेंगे तो इन बच्चों पे बोझ क्यों चढ़े। अच्छा समझो तो समझो, नहीं समझो तो मत समझो, तुम्हारे ऊपर, छोड़ दिया। जैसे कि माता पिता बच्चों से ऊब जाते हैं, कोई बहुत तंग करता है तो फिर माँ बाप भी कहते ठीक है जो मर्जी आए करो, यही इशारा है बाबा का। मैं हर तरीके से प्रेम से ऐसे 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 जितनी तरीके से वो हमें समझा सकता था कि तुम ही मेरे राजा बच्चे हो, तुम ही होवनहार देवी देवता हो, अपनी दृष्टि में अपने बोल में अपने कर्म को वो दिव्यता वो रॉयल्टी ले आओ, नहीं ला रहे तो अच्छा ठीक ओके जो बनना है बस। वो कितना करेगा, कितना बोलेगा, ये भी इशारा बाबा का समझो। अब बाबा होमवर्क नहीं दे रहा है, होमवर्क कब तक दिया जाता है, जब तक एग्जाम नहीं आती है, एग्जाम आ गई फिर होमवर्क क्या, अब तो लिखना ही है। ये पिछली 3 मुरली में उठा के देखिए कौन सा होमवर्क दिया बाबा ने, कोई होमवर्क नहीं दिया। 3 मुरली में बाबा क्या चाहता है, रिजल्ट सुनाया। बाबा कह रहा तेरे को मेरे में कर दो, पढ़ाई का सार यही है, तन कैसे भी हो मन को तो मेरे में लगा दो, मन ठीक रहेगा तो तन अपने आप ठीक हो जाएगा, क्लियर करके बोल रहा है, ये तो हिसाब किताब चलते रहेगा, लेकिन मन को तो मेरे में लगा दे, मन ठीक रहेगा तो तन अपने आप ठीक रहेगा, यही तो कह रहा, तेरे को मेरे में करना, मेरा मेरा क्यों कर रहे हो, सब कुछ तेरा है। कहने का मतलब अब हमें इन इशारों को समझ के अब अपनी स्थिति बना लेनी चाहिए, भगवान अब हमें रिजल्ट सुना रहा आपकी मैं क्या चाहता हूँ, और वो चाहना जो चाह रहा है वो अभी से हम चेक करते चले, वो रॉयल्टी आ गई, भविष्य में महाराजा महारानी बनना है, एक दिन में नहीं बनेंगे, जो बाबा 3-4 साल से कहता रहा बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास, किस चीज का अभ्यास? एवरीडी कहता रहा, किस चीज की एवरीडी? भविष्य में जो 16 कलर संपूर्ण निर्विकारी बनना है उसके में एवरेडी बन गए, 100% प्योरिटी आ गई, यानी यहां से गई वहां पे जाके वतन को छू के नीचे ही तो आना है, तो वो चीजें अभी आ गई उसके लिए एवरेडी पूछ रहा। कई बच्चे साहब से बाबा बड़ा घर चलना है, चलना है, मरने को तैयार है बाबा, दुनिया तो वैसे ही दुख दे रही है, सब हाथ उठा ले रहे, मरने के लिए तैयार हो के ये नहीं पूछता वो, ये पूछता है सब 100% पवित्रता आ गई, 16 कला संपूर्ण जो देवी देवताओं का गायन है वो कलाएं वो बातें आपके जीवन में आ गई, उसके लिए पूछता है एवरेडी हो? बहुत काल का अभ्यास है, किस चीज का अभ्यास? अंत समय तक हमें क्यों बाबा ने रखा है? अंत समय हम सब बच्चों को अंतवाहक शरीर के द्वारा जब विनाश लीला शुरू होगी तो जाके आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। वो मुक्ति कौन दिला पाएगा? जिसने बहुत काल का अभ्यास शरीर से परे, जब चाहो 1 सेकंड में आत्मा निकली, सूक्ष्म शरीर निकाल के कहीं पर भी जाके सेवा करके आ गई, जिसने वो किया होगा। बाबा ने बताया दुनिया वालों को दवाई देने के लिए दवाई नहीं होगी, पानी नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, चारों तरफ पानी होगा लेकिन पीने का पानी नहीं होगा, उसी में जानवर, उसी में ढोर गाय भैंस सब तैर रही होगी, वो पानी पिला नहीं सकेंगे, किसी का हाथ कटा पड़ा, किसी का सिर फटा पड़ा, बहुत तड़फ रही आत्माएं, उस समय क्या दे सकते हैं उनको? उस समय उनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि उनकी आत्मा शरीर से निकल जाए और हम जाके सूक्ष्म शरीर से उनको दृष्टि देंगे, बाबा ये आत्मा बहुत तड़फ रही है, इसको मुक्ति दे दो। हमने दृष्टि दी और वो आत्मा निकली, सत्युग त्रेता में नहीं आएगी क्योंकि ज्ञान नहीं सुना, लेकिन वही आत्मा जब द्वापर और कलयुग में आएगी हमको देखेगी तो अंत समय हमने उसे मुक्ति दिलाई थी तो कहेंगे ये मेरी इष्ट देवी है, ये मेरे इष्ट देवता है, उनके हम भगवान बन जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम अपने देवी, अपने भक्त भी बना रहे हो, अपनी प्रजा भी बना रहे हो, अपनी रॉयल फैमिली भी बना रहे हो, क्या हमारे वो बहुत काल का अभ्यास हमने कर लिया शरीर से निकलने का? 1 मिनट में सुने कि कहीं भूकंप आया, कहीं सुनामी आया, टीवी चालू करके देखने के लिए बैठने के लिए बाबा ने नहीं रखा, उसी समय बस निकलो आत्मा से और सूक्ष्म शरीर लेके पहुंचो और वहां जितनी आत्माएं तड़फ रही उनको याद करके बाबा इन सबको मुक्ति दो, मेरे भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, आपने मुझे इसीलिए रखा, प्लीज मेरे बाबा, प्यारे बाबा आपके बच्चे हैं, जिद जैसे करते हैं वैसे करें और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएं, उसके लिए बाबा हमें अंत तक रख रहा है। क्या ये सारी ड्यूटी याद है? अंत में कई आत्माएं असमय शरीर छोड़ेंगी, उनकी आत्मा भटक रही होगी, उनको शरीर तो नहीं मिलेगा, उनको क्या चाहिए? शांति। उनको शांति देने के लिए इतनी अपने पास शांति का स्टॉक जमा किया कि कोई भटकती आत्मा आए हम देख के पहचान जाए कि ये आत्मा भटक रही है, इसको कहीं ना कहीं स्थान चाहिए, शांति चाहिए, वो दे दे। ये सब कब होगा? जब ये याद होगा कि बाबा ने अब तक हमें क्यों रखा है, और अंत तक रखा है इसलिए कि ये आत्मा है और उसी से तो हमारा भाग्य बनना है, उसी से तो हमारा भविष्य बनना है। जो देंगे, जिनको कुछ प्राप्ति कराएंगे वही तो अपना मानेगा, किसी को कुछ देंगे वही तो अपना बोलेगा हाँ ये मेरे राजा है। राजा यानी जो प्रजा को अपना बच्चा समझता हो। क्या दुनिया की आत्माओं को हम बच्चा मत समझो, कम से कम भाई बहन तो समझो, भाई बहन के प्रति दर्द तो समझो। जो बाबा मुरली में कहते भक्तों की आवाज सुनाई देती है, दुखियों की आवाज सुनाई देती है, वो किसके लिए कह रहा है कि वो पुकार रहे हैं? अभी हमारी ड्यूटी क्या है? अपना भला तो कर लिया हमने, ज्ञान ले लिया हमने, अपने लिए कर लिया, अब औरों के लिए करो। सिर्फ अपना पेट भरने से क्या होगा? हमें किसी एक मोहल्ले का थोड़ी वो छोटा सा कुछ बनना है, या कोई एक एरिया का थोड़ी एमएलए बनना है, विश्व महाराजन बनना है, विश्व महारानी बनना है, एम कितना बड़ा बाबा ने दिया है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं हमें पहले दिन के पाठ को पक्का करना है। एक मत, मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं अपने विघ्नों को तो दूर करने वाली हूँ ही, लेकिन मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, सारी विश्व की आत्माएं आएंगी मांगने, उनके विघ्नों को दूर कैसे करेंगे जब मैं विघ्न विनाशक की स्थिति में स्थित होंगे, उस स्वमान में होंगी। यस, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, संकल्प करूंगी बाबा मेरे साथ ही, बाबा इस आत्मा का विघ्न दूर कर दो प्लीज बाबा, प्लीज बाबा। अंतिम अंजलि लेने आई है और वो आत्मा महसूस करेगी कि जैसे वरदान मिल गया हो। वहाँ पत्थर की मूर्तियां वरदान नहीं देंगी, यहाँ भी हम चैतन्य मूर्तियां आत्माएं जो सामने आएंगी उनको वरदान देंगी। क्या वो वरदानी मूर्त जो देना है उतनी स्थिति उतना स्टॉक हमने जमा किया है? और उसके लिए फिर वही बात करेंगे जो आज का सब्जेक्ट, एक मत, बाबा की एक मत मान लो पहली मत, और बातों में नहीं जाओ। एक रस स्थिति, एक बाबा दूसरा ना कोई, और दुनिया के रस में अब आकर्षण ना हो, कोई बहुत तारीफ करता है ये भी एक रस है, खाने का भी एक रस है, पहनने का भी एक रस है, बहुत रस है दुनिया में, वो सब रस के पीछे पड़ेंगे तो ये रस नहीं मिलेगा। दो चीटियां आपस में मिली, एक चीटी पूछती कहाँ रहती हूँ, कहा मैं नमक के पहाड़ पे रहती हूँ। दूसरी चीटी ने कहा मैं शक्कर के पहाड़ पे रहती हूँ। उसने कहा नमक कैसा होता है, कहा सफेद होता है। शक्कर की चीटी ने कहा शक्कर भी सफेद होती है, कहा शक्कर कैसी होती, कहा मीठी होती है, कहा मीठी यानी कैसी, कहा मीठी यानी मीठी, कहा नहीं फिर भी बताओ ना मीठा यानी कैसा होता है, कल मेरे पहाड़ पे आना, कल मेरे पहाड़ पे आना, मैं शक्कर खाने को दूंगी, तुम्हें पता चलेगा कि मिठास क्या होती है। नमक की चीटी ने कहा ठीक है। अगले दिन अपने पहाड़ से उतर के शक्कर के पहाड़ पे जाना था, सोची कि अपने पहाड़ उतरूंगी, उसके पहाड़ पे चढ़ूंगी, पता नहीं उसकी शक्कर कैसी हो, कैसी लगती कैसी नहीं, मैं अपना तो खाना लेके जाऊं, अपने गले में एक नमक का गोला रख लिया। पहाड़ उतरी चढ़ी, शक्कर के पहाड़ वाले ने अपना पूरा पहाड़ दिखाया घुमाया, बड़ी खुशी, कहती ये तो बिल्कुल मेरे पहाड़ जैसा है। कहा वो तो है, दोनों एक जैसे होते, लेकिन तुम जानना चाहती थी ना मिठास कैसे होती, ये लो शक्कर का गोला खाओ और देखो कैसी होती है मिठास। उसने शक्कर का गोला खाया, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसने कहा इसमें तो कोई मिठास विठास नहीं, ये तो नमकीन ही, मेरे नमक की जैसे टेस्ट है। शक्कर के पहाड़ वाली चीटी ने कहा प्यारी बहना, अभी तुम्हारे मुंह में शक्कर का रस नहीं जा रहा है, अंदर जो नमक का गोला रखा है ना पहले उसको थूको, अभी नमक का ही रस जा रहा है, इसके लिए नमकीन लग रही, वो नमक का गोला थूको फिर शक्कर खाओ तो पता चलेगा मिठास कैसी है। हम सब ने भी नमक का गोला मुंह में रखा है पुराने संस्कार, और कहते बाबा को योग लगाते रस नहीं आता, आनंद नहीं आता, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती, अरे पहले नमक का गोला तो थूके। नमक का गोला जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो व्यर्थ को बचा रखा है उसको थूको, फिर बाबा से योग लगा, देखो वो मिठास पता चलती है कि नहीं, जिंदगी कितनी मीठी लगेगी। हाँ बाबा यही तो चाहती थी आत्मा, फिर बार बार मन करेगा चलो बाबा के पास, चलो बाबा के पास, क्योंकि वो आत्मा को रस जिसको लग गया बाबा के गोद में, वो अतिंद्रिय सुख के झूले में, वो आत्मा फिर छोटी मोटी बातों में नहीं फंसी रहेगी। बार बार जहाँ मौका मिला चलो, जो चीज की आदत लग जाती है, आत्मा को परमात्मा की गोद में झूलने की आदत लग जाए, लेकिन वो रस कब आएगा? एक रस स्थिति, एक रस स्थिति के लिए सबसे पहला पाठ एक मत, पहली मत, मैं कौन, किसकी तो है दादी जान की जो बात कहती, मैं कौन मैं किसकी, वही बात, आत्मा तो हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, किसकी हूँ, साधारण मत समझो। अगर वो सुमान रहे, वो नशा रहे, दुनिया का नशा छोड़ दो, ईश्वरी नशा चढ़ाओ, देखो फिर कैसे लगता है कि हाँ ये जीवन से तो फिर सारी जीवन, वो सतयुग में क्या होगा, वहाँ रॉयल बुद्धू होंगे, रॉयल होंगे लेकिन बुद्धू होंगे। समय हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, गुण की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, संकल्प की शक्ति, पुण्य की शक्ति। और सबसे बड़ी जो बाबा ने कहा, संतुष्टता की शक्ति। और ये छह शक्तियों के द्वारा पूरी दुनिया की आत्माओं का हम भला कर सकते हैं। हमें बाबा ने कहा कोई बीमार है, योग की शक्ति सबसे बड़ी होती। एक शक्ति और है हमारे, हम सब पुण्य आत्माएं बैठी हैं, हमारे पास बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे। किसी के लिए आप योग कर रहे हैं, बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, योग के साथ साथ उसको बाबा को बोलो, बाबा मेरे एक हफ्ते का पुण्य का दान इस आत्मा को कर दे, ये ठीक हो जाए। किसी के लिए कहो बाबा इसको एक दिन का, मेरे जिंदगी का सबसे पुण्य का दिन, वो पुण्य इसको दान कर रही हूँ, ये ठीक हो जाए। डरिएगा नहीं, आपका पुण्य कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है कि कलयुग में इंसान अच्छे संकल्प ही नहीं कर पाता, संकल्प से भी नहीं दे पाता। लेकिन जिसने बाबा की इस बात को समझ लिया होगा, वो कई कई जन्मों के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकता है। हमारे पास प्योरिटी की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। और इन सबके द्वारा हम चाहें तो अपना तो भला कर ही लेंगे, लेकिन हम दुनिया का भी भला, जो विश्व का कल्याण बाबा कहते, वो भी कर सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखें, बाबा की एक मत याद रखें, और उस एक मत के आधार पे हम अपनी स्थिति को भी एक रस बना सकते हैं। और एक सहारा तो वो है, उससे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, और उसी को सहारा बना के, उसी के आधार से, उसी से सब लेकर देना है। अपने पास से कुछ नहीं देना, लेकिन अपने विचारों को महान बनाना है, उदार दिल बनना है। विश्व महाराजन बनना है तो उतना बड़ा दिल, उतनी बड़ी सोच, उतने ऊंचे विचार रखना है। हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है और कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।